नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। ऋषिकेश में बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार ने 489 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत लंबित कार्यों में तेजी लाने और इसके लिए 15 जून तक शासन आदेश जारी करने के निर्देश। देहरादून में विकास नगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण में अनियमितताएं उजागर। जिलाधिकारी सविन बंसल ने संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने राज्य में इलेक्ट्रिक तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए 489 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली के लिए 59 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत योजनाओं का शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में बिना तैयारी पहुंचे अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकों में बिना पूरी तैयारी के आना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी तथ्यात्मक जानकारी के साथ ही बैठक में आए। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी फटकार लगाई और कहा कि तालमेल के अभाव में विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं। उन्होंने सभी सचिवों को संबंधित क्षेत्रों की घोषणाओं की फिर से गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित घोषणाओं के लिए 15 जून तक शासनादेश जारी करने और जिन कार्यों के लिए शासनादेश जारी हो चुके हैं उन पर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर के मामलों को अनावश्यक रूप से शासन तक लाने पर भी नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर किया जाए जहां वे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून से पहले सभी लंबित घोषणाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बैनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। कुल 293 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 206 सीटें जीत ली हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 81 सीटें जीती हैं। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि माकपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। इन नतीजों के साथ भाजपा राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। यह पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और तृणमूल कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुडुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। श्रीलंका सिविल सेवा के 40 प्रशिक्षु अधिकारियों का एक दल कल हरिद्वार पहुंचा, जहां जिला आपदा प्रबंधन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अधिकारियों को आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों, दायित्वों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी। साथ ही हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, कुंभ मेला और कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को समझाया गया। कार्यक्रम में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा विकास खंड स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों के सवालों के जवाब भी दिए गए। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेन देन किए गए हैं। यह 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकास नगर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान वर्ष 2018, 2024 और 2025 तक के मूल विलेख पत्र संदिग्ध स्थिति में पाए गए, जिन्हें कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया। जांच में प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री के मामले भी पाए गए। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क चोरी से जुड़े 47 मामले भी चिन्हित किए गए हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और प्रक्रियाओं के उल्लंघन जैसी अन्य अनियमितताएं भी सामने आई। जिला प्रशासन ने इन सभी मामलों की विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट शासन को भेजेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान और पूर्व में तैनात सभी सब रजिस्ट्रार के कार्यकाल की गतिविधियों की भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कुल्हान सहस्त्रधारा स्थित मुख्यालय का दौरा कर निगम की कार्यप्रणाली और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर बस अड्डों का निर्माणाधीन परियोजनाओं, बस सेवाओं की समयबद्धता और यात्रियों की सुविधाओं पर चर्चा की। श्री बत्रा ने निर्देश दिए कि परिवहन सेवाओं में सुधार लाते हुए आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए और इलेक्ट्रिक तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण व कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्री संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में ग्लेशियर झीलों, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली और भूस्खलन न्यूनीकरण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। बैठक में ग्लेशियर झील विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण के तहत वसुंधरा झील को पायलट साइट के रूप में विकसित करने की जानकारी दी गई, जहां अर्ली वार्निंग सिस्टम और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इस कार्य के लिए विस्तृत समय सीमा तैयार करने और न्यूनीकरण उपायों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में अब तक 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए जा चुके हैं। IIT रुड़की के सहयोग से चेतावनी प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाया जाए तथा सेंसर और सायरन नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए। भूस्खलन और मलबा बहाव से जुड़े जोखिमों की समीक्षा में बताया गया कि चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 48 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। मुख्य सचिव ने इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण, निगरानी और जरूरी निवारक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों में संबंधित विभागों और तकनीकी संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि आपदा जोखिम को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऋषिकेश में बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार ने 489 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत लंबित कार्यों में तेजी लाने और इसके लिए 15 जून तक शासन आदेश जारी करने के निर्देश। देहरादून में विकास नगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के औचक निरीक्षण में अनियमितताएं उजागर। जिलाधिकारी सविन बंसल ने संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने राज्य में इलेक्ट्रिक तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।